आगे अब एक जंग में कुछ अपसेटनेस हुई थी उसका तस्करा रुकू नंबर 10 25 से 29 आयत है। दीन हक के गलबे की कोशिश करना। लकत नसरकुमुल्लाहु फी मवातिना कसीरा, यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फतह दी है और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी जबकि तुम्हें अपनी कसरत पे नास हो गया था लेकिन इसने तुम्हें कोई फायदा ना दिया बल्कि जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ने लगे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे और काफिरों को बुरी सजा दी। इन कुफार का यही बदला था। फिर इसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए और अल्लाह ताला बख्शिश वाला मेहरबानी करने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना भटकने पाए। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और इसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं जानते न दीन हक़ को कबूल करते हैं। इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है यहाँ तक के वो जलील ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया दें। अल्लाह अकबर कबीरा। आई 26 के साथ एक शान नजूल है। इबन मसूद फरमाते हैं मैं भी इस लश्कर में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 80 मुहाजर और अंसार रह गए थे, हमने पीठ नहीं दिखाई थी, हम पर अल्लाह ताला ने इत्मीनान और सुकून नाजिल फरमा दिया था। तो इस हिस्से में बड़ी अहम बात है, आप देखिए कि कुफर और इस्लाम ऐसे जैसे एक ठंडे पानी का ग्लास और एक गर्म पानी का ग्लास, आप जब दोनों को एक बड़े फ्लास्क में डालेंगे ना तो गर्म गर्म नहीं रहेगा और ठंडा ठंडा नहीं रहेगा, एक तीसरी चीज बन गई होगी ल्यूक वार्म वाटर। देखिए ना 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉइलिंग वाटर, ठीक है, और दूसरी तरफ आप -1 नहीं तो चले 0 पे ले लीजिए फ्रीजिंग। अब आप एक हाथ में एक ठंडा ग्लास पकड़े एक हाथ में गर्म, एक तो बीमार होंगे। आप कहते ऐसा करते हैं लाओ एक बड़ा सा ग्लास बड़ा जग लाओ दोनों को डाल दो, क्या ठंडा उतना ही ठंडा रहेगा और गर्म उतना ही गर्म रहेगा? वो एक तीसरी चीज़ ल्यूक वार्म वाटर बन चुकी होगी। अब इनमें से एक है इस्लाम और एक है कुफर। बॉइलिंग वाटर जो ना ये इस्लाम है, इस्लाम में बड़ी हरकत है और कुफर स्टैटिक होता है, ठंडा धीमा। सहाबा कराम की जिंदगी में हलचल थी, थ्रिल थी, कुछ करो आज इधर जा रहे आज वो कर रहे आज ये महाज आज वो महाज आज। और इसके बाद कुफर मी माई वाइफ एंड माई किड्स ई ड्रिंक बी मैरी माई होम माई जन्नत, बस मेरा घर मेरी जन्नत। अब होता क्या है कि जब दोनों को जोड़ा जाता है तो इस वक्त इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में जहाँ आप और मैं बैठे हैं, जो दुनिया का हमारा फेस चल रहा है इस वक्त, इसमें आप और मैं ठंडे होके नहीं बैठ सकते। आज हमारे ईमान ल्यूक वार्म वाटर है। सहाबा का ईमान 100 डिग्री प्लस था और आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर और भाप गैस उसमें कितना फ़र्क है। मुझे नूरुल्ला नूर का एक लेसन याद आ रहा है, अगर आप लोगों को भी याद आ जाए तो आप देखिए कि इंजन किस चीज़ से चलाए जाते थे पहले दौर में, अभी नहीं मुझे पता, भाप से, स्टीम। अच्छा, स्टीम जब बनता है पानी तो वो इंजन को हांकता है, सिर्फ उसे एक डिग्री ओनली 1 डिग्री लेस हो तो उबलता पानी है। आप किसी भी ऐसे इंजन में जाकर उबलता हुआ पानी डालें तो इंजन जल जाएगा। हमारी आपकी जो नेकियों की कोशिश है ना उसमें ओनली 1 डिग्री का फ़र्क है। हम बहुत कुछ करते हैं, लेट्स सी 99 पे पहुंच गए हैं, लेकिन सिर्फ एक दर्जे की कमी है जो हमें 3 फिगर पे नहीं लेके आ रही कि हम 100 बन जाए। 100 पे खतरनाक है, गर्म पानी पाँव पे पड़े आपके पाँव को जला के रख देगा, सिर्फ 1 डिग्री और कर दे वो उड़ा के ले जाएगा। यानी अल्लाह कहते हैं अपनी कोशिशों को और तेज करो। सहाबा किराम ने कभी अपनी कोशिशों को ज्यादा नहीं समझा। हम थोड़ी सी देर में थपथपाते हैं खुद को, थप 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 सो जा, लोरियां देते हैं, बड़ी कर ली बहुत कर ली, ये नहीं की जरूरी तो नहीं वो करें। इसमें जो गज़वे हुनैन का किस्सा है ना, ये सन 8 हिजरी में रमज़ान ही में हुआ था और आप हैरान होंगे बड़ी से बड़ी जंगें और मार्के रमज़ान में होते थे, पता नहीं क्यों। इसलिए कि उसमें इंसान के पास बहुत है। मुसलमानों को थोड़ा सा एहसास हो गया था कि हम ज्यादा हैं। इजा जबत कुम कसरत कुम, आपको भी जैसे ज्यादा ही कुछ मान होता है ना कि मेरे जैसी बिरयानी कौन बनाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस दिन पता क्या होता है, चावल ढीले हो जाते हैं। ये है, खुद पसंदी ना करो, अपने ऊपर नहीं, रब पे भरोसा करो। क्योंकि जितना आपका अपने ऊपर भरोसा आएगा ना, उतना घमंड आएगा, बड़ाई आएगी, फिर आप अल्लाह से भी बेनियाज हो जाते हैं। फिर जो लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो डिसिप्लिन भी नहीं फॉलो करते, वो कहते हैं ये लाइन में मैं खड़ा हूँ, ये तो उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो सीधा ठक ठक करके आगे काउंटर पे पहुंच जाऊंगा। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये गैर हकीकत पसंदाना चीज़ होती है। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। इससे इंसान के अंदर तवाज़ो आती है, हकीकत पसंद बनता है। और जब अल्लाह ने शुरू में हरम में मुशरिकों का दाखिला बंद किया, सूरत के शुरू में आपने पढ़ा, तो कुछ मुसलमानों को खतरा हुआ, फिक्र हुई कि खाए अगले साल हज में फिर मुशरिक नहीं आएंगे तो हमारी दुकानें कैसे चलेंगी। आज की मिसाल ले लीजिए, कोरोना में 2 साल तक हरम के अराउंड सब बंद रहा, तो पता नहीं क्या उन बेचारों के साथ हुआ होगा। जब मुशरिकों ने नहीं आना तो बड़े लिमिटेड मुस्लिम आएंगे तो हमारी दुकानें नहीं चलेंगी। अल्लाह ने कहा डोंट वरी, अल्लाह के हाथ में है माल। और आज तक देखिए, उस बंजर बियाबान ज़मीन के अंदर दुनिया की हर चीज़ पहुंचती है। जो मौसम के फल इधर ना आपको बेमौसम के मिले, वो वहाँ मिल जाते हैं। तो क्या पता चला कि जब मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर तिजारती रिश्तों को भी तोड़ देता है ना, तो अल्लाह ताला उसको गैब से रिस्क देता है। कुर्बानियाँ कुर्बानियाँ, आप अल्लाह ताला की बात मानते जाएं, आपकी ज़िंदगी में बरकतों के दरवाजे खुलते जाएंगे। और जितना ईमान आपका ज़िंदा होगा, उतना आप हर नेकी को, नेमत को अल्लाह से जोड़ते जाएंगे। और आप फूल भी देखेंगे तो कहेंगे ये अल्लाह का बनाया हुआ है, उसकी खुशबू भी आपको अल्लाह से जोड़ेगी। आप सूरज को देखते हैं तो आपको लगता है कि अल्लाह ताला का एक पैगाम है, एक निशानी है। तो उतना फिर आपकी ज़िंदगी में निशानियाँ देखकर अल्लाह ताला की तरफ करीब आने का जज्बा उभरने लगता है। हम इस रुकू में से अपने लिए चीज़ें नोट करेंगे। नंबर एक, सच्चे दीन की इताअत करना है, तौबा करनी है, कसरत पे फख्र नहीं करना, मुशरिकीन के लिए नरम गोशा नहीं रखना कि हम उन जैसे बनने लगे, तंग दस्ती का खौफ नहीं रखना, और मैदान जंग से नहीं भागना, यानी अपने हिस्से की नेकी को छोड़ना नहीं है। आगे है रुकू नंबर 11, आयत 30 से 37। शिर्क जुल्म अजीम है, इसमें खास तौर पर नसारा और यहूद के कुछ बातिल अकायद का तस्करा है। वकालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर अपने आलिम और दरवेशों को रब बना लिया, और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो पाक है इनके शिर्क मुकर्रर करने से, यानी देखा देखी शिर्क कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें। युरीदून लियुत्फियू नूरल्लाह, और अल्लाह ताला इनकारी है मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा करेगा, गो के काफिर नाखुश रहें। इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिक बुरा माने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल ना हक खा जाते हैं। जन सेकंड रुकिए, अगर आपका किसी दीनी ऑर्गेनाइजेशन से ज़रा सा भी कोई ताल्लुक है, और ख़ास तौर पे फिर आप उसके मनी मैटर्स और उसके सदकात और उसकी डोनेशंस को डील करते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। क्या सुनिए, अक्सर उलमा और आबिद, यानी नसारा और यहूद की बात थी, लोगों का माल ना हक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं। और जो लोग सोना चांदी का खजाना रखते हैं, यानी उनको जमा कर करके, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए, जिस दिन इस खजाने को आतिशे दोजख में तपाया जाएगा। फिर इससे इनकी पेशानियाँ और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। इनसे कहा जाएगा, हाजमा कनस तुम, ये है वो जिसे तुमने अपने लिए जमा कर करके रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताबुल्लाह में 12 की है। इस दिन से ही जब से आसमान और ज़मीन को इसने पैदा किया, ان میں سے چار حرمت والے ہیں، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیو، یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، یعنی گنتی پوری کر لیں بس، پھر اسے حلال بنا لیں۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ بہت ہی خوبصورت رکوع ہے۔ پہلے تو آیت 32 پہ وہ شعر نوٹ کیجئے جو بالکل اسی آیت پہ ہے، آہوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یعنی اللہ، رسول اور دین سے محبت کرنے والوں کے دل اس نور سے روشن رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا ایک پلان ان آیات میں بتا دیا۔ ساری دنیا کے لوگ جو مرضی کرے، شروع میں تو آپ دیکھیے کہ ابن اللہ کی باتیں تھیں، اس کو تو چھوڑ دیجئے، عزیر نے ابن اللہ کہہ دو یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دو، اصل میں یہ شرک ہے جس کو مٹانے کی آج کے مسلمان کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، گرج ہونا چاہیے شرک سے۔ لوگ شرک کر کر کے دنیا سے جا رہے ہیں اور میں بیکار بیٹھی ہوں۔ لہٰذا اللہ نے ایسی ساری چیزوں کی بات کر کے، ان کے جزیوں کی باتیں کر کے بتا دیا، ڈومیننسی اسلام کو ہے، کفر کو نہیں ملے گی۔ دوسری بات یریدون سے دیکھیے تو اصل میں اس آیت میں، بلکہ آپ اس آیت کو آگے بھی جا کے پڑھیں گے، یہ خاص طور پہ جو آیت 33 آ رہی ہے نا، یہ تین دفعہ قرآن میں مختلف مقامات پہ آئے گی، لیکن یہاں اللہ نے اس دور میں جب اسلام دبا ہوا ہے، ڈاؤن ٹروڈن ہے، اس کے اندر کوئی سے نہیں ہے، اللہ نے مستقبل کا فیصلہ کیا کہ اللہ اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھے گا۔ ماضی کی طرح اب تک ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا کہ لوگ ملاوٹوں والے دین میں گم ہو جائیں اور سچا دین مٹ جائے۔ یہ جو زہیر ابن اللہ کا عقیدہ کوئی ان کی کتابوں میں تھوڑی تھا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کوئی انجیل میں تھوڑی کہا گیا تھا، انہوں نے ملاوٹیں کر لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دین ملاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے انسان کو اس زمین میں بھیجا ہے اس کے ساتھ ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ سورۃ بقرہ، آدم اور ابلیس کا قصہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کیا کیا، ایک ہدایت نامہ بنا کر اس کو اوپر نہیں ٹانک دیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے اس ملک کے قیمتی پیپر گورنمنٹ کے پاس ہوں گے نا، آپ کے میرے ہاتھ میں تو لا کی نہیں ہے، کچھ چیزیں پبلک کو دے دی جاتی ہیں، جیسے اسکولز والے ہینڈ بک بنا کر اسٹوڈنٹس کو دے دیتے ہیں، ایک پیرنٹ ہینڈ بک بنا کے ماں باپ کو دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا، پورا پلانر، پورے سیکرٹس ڈال کر نا ہاتھ میں دے دیا آپ کے میرے، یہ لے لو۔ تو اب کیا کرو؟ لوگوں نے غفلت اور دنیا پرستی کی بنیاد پہ اللہ کے لکھے ہوئے الفاظ کو بدل دیا۔ میں اپنی مرضی سے یہ 7 کو 8 کر دوں، 6 کو 5 کر دوں، جو میرا دل کرے میں لکھوں، جو چاہے مٹا لوں۔ لوگوں نے یہ کیا، تورات کے ساتھ بھی یہ کیا، انجیل کے ساتھ بھی یہ کیا، اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہاں سفارشی مان کر ان کے بارے میں عقیدے گھڑ لیے کہ ہم جو مرضی کر لیں یہ بزرگ آئیں گے، سفارش کریں گے، ہمیں بچا دیں گے۔ یہ پارڈن کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کا، حضرت عیسیٰ کا آپ کے کفارے میں سولی پہ چڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جنت کی چابیاں بھی اپنے علماء اور رہبان کو پکڑا دی، یہ دروازے کھولتے جائیں گے اور ہم آگے جاتے جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ بک کو ایکسرسائز بک بنا دیا۔ آپ کا بچہ کتاب پہ لکھے تو آپ کہتے کیا کر رہے ہو، نوٹ بک میں لکھو۔ پچھلے لوگوں نے کتابوں کو کاپیاں بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نبی بھیجا جس کے میں اور آج امتی یہاں پر میں۔ اللہ نے کیا کیا، آپ سوچئے کہ اسی کو میں ایک صرف مثال دے دیتی ہوں، دیا تو ہمیں ہی ہے، قرآن ہمارے ہاتھوں میں، لیکن اس کو پی ڈی ایف کر دیا۔ گو کہ آج پی ڈی ایف بھی چینج ہو جاتا ہے، لیکن جن کو کمپیوٹر کی زبان پتہ ہے وہ سب جانتے ہیں پی ڈی ایف نان چینجیبل ہوتا ہے، پی پی ٹی چینج ہو جاتا ہے۔ ورڈ ڈاکیومنٹ کو آپ چینج کر لیں، ان پیج کو آپ سارا ہی چینج کر لیں، اللہ نے اس قرآن کو پی ڈی ایف فارم میں دیا، یا لیمونیشن کرا دیا کہ مسلمانوں اس قرآن کے چاہے لاکھوں نسخے بنا کے پوری دنیا میں چھاپ دو، تم اس کی زبر اور زیر کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ ہے لیوس کرہ الدین کلی، अनचेंजेबल। और ये है युरीदून अली युत्फी नूर अल्लाह बी अफवाहिम, लोग कोशिश करें इस्लाम को बदलने के लिए, नहीं बदल सकते। इस शम्मा को बुझाने की कोशिश करें, नहीं बुझा सकते। और देखिए जब नबी आए ना तो लोगों ने खुद साख्ता दीन बनाया हुआ था, अरबों का एक अपना दीन था। पीछे पढ़ी आए आप सारी कहानियाँ, कहते थे ये दीन इब्राहिमी है, लेकिन कोई बातें रह चुकी थी दीन इब्राहिमी की, जैसे हम शरबत थोड़ा सा डाल के कहते रूह अफजा है, होती सारी चीनी है, थोड़ा लाल रंग भी डाल दे क्योंकि इतनी महंगी बोतल रोज कौन लाए। हम भी एक दो ड्रॉप डाल के ना दीन के कहते ये दीन है, बाकी सब के ला के अंदर चीनी चीनी डाल लेते हैं। वो कहते थे खुद को इब्राहिम के दीन पे, लेकिन वो दीन नहीं था। यहूद की बात कीजिए, वो कहते थे ये दीन मूसवी है, हजरत मूसा का दीन है। नसारा ने एक दीन जिसको दीन मसीह कह दिया। लिखिए ये सब खुद साख्ता एडिशन थे, मैन मेड एडिशन ऑफ होली बुक, जो दिल चाहा लिखा, जो दिल चाहा मिटा दिया। अल्लाह ने सब को रिजेक्ट करके फाड़ के एक नया दीन दिया, और वो था हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, ये दीन हक है। आज इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसके मतन यानी टेक्स्ट में ज़रा भी तब्दीली नहीं है। आज भी पूरी दुनिया कोशिशें कर रही है इस्लाम को बदलने की, मुसलमानों औरतों को मज़लूम साबित करने की, हमारे प्यारे नबी के कार्टून बनाने की, उनको रंगीला रसूल कहने की, लेकिन वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का दीन है आज जिस पे आप इतबार कर सकते हैं। किताब अरबी ज़ुबान में, कितनी ज़ुबानें आईं और आके चली गईं, आपको तो 100 साल के बाद ज़ुबान चेंज हो जाती है। हमारी उर्दू तो आधी से ज़्यादा अब इंग्लिश बन चुकी है, अगले शायद 20-25 साल बाद आप देखिएगा उर्दू में कुछ 4-6 लफ्ज़ ही उर्दू के रह जाएंगे, बाकी आपकी इंग्लिश और दूसरी चीज़ें मिल चुकी होंगी। इस अरबी के अंदर ज़रा भी चेंज नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम की सूरत ने, इस्लाम की सूरत में अल्लाह ने मजहब की जो रोशनी चलाई थी ना, वो कभी मद्धम नहीं हुई, बुझाना तो दूर की बात है। आज भी इस्लाम वो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है जो लोगों को खुशियाँ देगा, डिप्रेशन से बचाएगा और दूसरी तरफ ले जाएगा। आज भी लोगों ने ऐसी बुक्स लिखनी शुरू कर दी, रिलीजन ऑफ फ्यूचर इस्लाम, साइंस फ्यूचर का दीन है, यानी आपकी साइंस और आपके सारे इकोनॉमिकल सेटअप आज जो लोगों ने आजमा लिए हैं ना, ये सब ऐसा ऐसा अपनी मौत मर रहे हैं। कम्युनिज्म मर गया, सोशलिज्म मर गया। आप देखिए कि रशिया में कम्युनिज्म था, किसी जगह सोशलिज्म है, कोई कहता है जो दौलत कमाते हो सारी तुम्हारी है, कोई कहता है सारी हुकूमत की है। इस्लाम कहता नहीं, यू ओन योर थिंग्स, जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा होगा। इसी तरह आप देखिएगा कि वक्त के साथ साथ लोगों ने इंटरेस्ट को हराम कहना है, उसके नुकसान की वजह से। शराब को तो आज भी कई मुल्कों में बैन करने की कोशिशें की जाती, कराई जाती हैं, तो ज़रूरत है इस बात की कि हम उस वक्त के आने से पहले इसको दीन समझ के अपना लें, फिर तो नहीं सवाब होना। देखिए एक शख्स शराब पीता है, जब बूढ़ा हो गया लंग कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा शराब और पियोगे ना तो कैंसर के साथ जल्दी मर जाओगे, तो छोड़ देता है, तो क्या ये तौबा? बुढ़ापे में अब गाने समझ ही नहीं आते तो तौबा? अब नज़र ही कमज़ोर हो गई है तो अब फिल्म देखना ना देखना? तो जब हम दीन और नेकी समझ के कोई काम करेंगे तो अजर मिलेगा। अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करते हैं, हर तरह के शिर्क से बचना, उलमा और दरवेशों को बग़ैर दलील के उनकी बात नहीं माननी, उलमा की इज्जत कीजिए, फैज़ लीजिए, उस्तादों से इल्म लीजिए, दीनदारों के साथ मोहब्बत कीजिए, लेकिन बात उनकी सिर्फ वो लीजिए जिसकी दलील मौजूद हो। हम आज ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जैसे वो सलामियाँ या वो पैसे नहीं लुटाते थे लोग, नहीं पता ये सही बात है नहीं है। और आप यकीन करें कई दफ़ा जो पोस्ट के नीचे हदीस लिखी होती है ना, हदीस का नंबर भी लिखा होता है, जाकर देखे तो कोई नहीं होती। ये कोई दीन की खिदमत नहीं है। अल्लाह हमें इल्म के लिए संजीदा होने वाला बना दे। ये मुश्किल है बैठ के सुनना, 1 साल 2 साल 3 साल ये नहीं हो सकता। तो अभी नियत कर लीजिए कि हमने दीन सीखना है इंशाल्लाह, फिर लोगों का माल बातिल तरीके से नहीं खाना, अल्लाह के हलाल और हराम में हीले बहाने नहीं करने, बुरे अमाल को खुशनुमा देखकर उनसे मुतासिर नहीं होना और अपने ऊपर जुल्म नहीं करना।